चैप्टर 33 वक्रता। अनूठापन, टेढ़ापन काव्य के संदर्भ में वाणी की वक्रता, अनूठी उक्ति, चमत्कार पूर्ण कथन। आचार्य शुक्ल के अनुसार वक्रता दो प्रकार की हो सकती है, भाव प्रेरित वक्रता जैसी सूरदास जी के भ्रमर गीत में पाई जाती है, और सालंकृत वक्रता। भाव प्रेरित वक्रता ही काव्य की प्रक्रिया के भीतर आ सकती है, आलंकृत वक्रता प्रायः कोरा चमत्कार प्रस्तुत करने के कारण अत्युक्ति बन जाती है। उदाहरण, उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग से कुछ वक्रता आ जाती है, ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 39। द्वितीय उदाहरण, ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव के इस मनोहर उक्ति में है, तू जो कहीं सखी लोनो स्वरूप, सो मो अखियान को लोनी गई लगी। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 40। वक्रोक्तिवाद, वह काव्य सिद्धांत जो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन या आत्मा मानता है, उसके संस्थापक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने वक्रोक्ति की परिभाषित करते हुए कहा, वैदग्ध्य भंगी भणिति अर्थात विदग्ध भाव कवि कर्म कौशल का चमत्कार पूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। कुंतक के अनुसार अनेक रूप में वक्रोक्ति को स्पष्ट किया गया है। सबका निष्कर्ष यही है कि शास्त्रादि प्रसिद्ध व्यवहार सरणी का अतिक्रमण करने वाले चमत्कार पूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। यह वक्रोक्ति 6 प्रकार की होती है, वर्ण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पदोत आर्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। इन 6 भेदों के अनेक उपभेद भी कुंतक ने दिए हैं। वस्तुतः कुंतक एक प्रतिभा संपन्न मौलिक विचारक हैं। वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग उनके व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य विधायक प्रायः सभी तत्व आ जाते हैं। उदाहरण, यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद व्यक्ति काव्य जीवितम का ही नहीं नया रूप विलायती उत्थान है। चित्र में चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 98। अतः वही वक्रोक्ति वक्रोक्ति अलंकार नहीं, उक्ति का बांकपन या अनूठापन, वही वचन भंगी जो किसी न किसी भाव या मनोवृत्ति द्वारा प्रेरित होगी, काव्य के अंतर्गत ही होती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 98। नोट, आचार्य शुक्ल ने संभवतः वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ का अनुशीलन नहीं किया था। उन्होंने यदि उपचार वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता का अध्ययन किया होता तो कुंतक के संबंध में उनकी धारणा कुछ दूसरी ही होती। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 49 में वाक्य वक्रता की बात आचार्य शुक्ल ने ही की और उसके अंतर्गत अलंकारों के विधान का भी उल्लेख किया। आचार्य कुंतक ने भी वाक्य वक्रता के भीतर सभी प्रकार के अलंकारों के समावेश की बात की है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुक्ल जी ने वक्रोक्ति जीवितम का ये जो सरसरी निगाह से देखा था या उसके कुछ उद्धृत अंशों के आधार पर ही अपना मत स्थिर कर लिया था। संभवतः उक्ति पर अधिक बल दिए जाने के कारण उन्होंने धारणा बना ली थी कि इस सिद्धांत में वस्तु और भाव तत्व उपेक्षित हैं। वक्रोक्तिवादी, वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व मानने वाले आचार्य वक्रोक्तिवादी होते हैं। वक्रोक्तिवादी सिद्धांत के बीच भामा के विचारों को पाया जाता है। आचार्य कुंतक ने इसे पल्लवित करके एक पूर्ण काव्य सिद्धांत का रूप दिया। उन्होंने कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न चमत्कार को महत्व देने वाली उक्ति को ही काव्य का प्राण तत्व माना। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की भी न हो। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 41। वक्रोक्ति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक की प्रसिद्ध उक्ति है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्य भंगी भणिति उच्यते अर्थात कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न चमत्कार पूर्ण उक्ति ही वक्रोक्ति है। इनके अंतर्गत उन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रत्यय वक्रता, वाक्य वक्रता। आचार्य कुंतक ने इसी के अंतर्गत अलंकारों का विवेचन किया है। प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, इन सभी का अंतर्भाव कर लिया गया है। इन सभी वक्रोक्ति प्रकारों को सामान्यतः वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता के अंतर्गत समेटा जा सकता है। उदाहरण, उक्ति की वहीं तक वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतक जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानने बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, इसके आगे नहीं। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्य तत्व मानते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 40। वज्द परमात्मा की पूर्णता प्राप्ति और तज्जनित आनंद की अनुभूति वज्द है। उदाहरण, इस हाल या प्रलयावस्था के दो पक्ष हैं, त्याग पक्ष और प्राप्ति पक्ष। प्राप्ति पक्ष के अंतर्गत है वका और वज्दा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति और शुद्ध। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 143। वर्णन प्रणाली, काव्य की वर्ण्य वस्तु की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए उसके अनुकूल जिस अभिव्यक्ति पद्धति का ग्रहण किया जाता है, उसे वर्णन प्रणाली कहते हैं। उदाहरण, वर्णन प्रणाली की कुछ पहचान आगे कही जाएगी। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 86। नोट, आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के फॉर्म शब्द के लिए कई हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने वर्णन प्रणाली कहा, कहीं विधान विधि कहा, कहीं साचा और कहीं उक्ति का स्वरूप कहा। वे फॉर्म के लिए कोई एक शब्द निर्दिष्ट नहीं कर सके। अब फॉर्म के लिए रूप शब्द निर्दिष्ट सा हो गया है। वर्ण विन्यास, पद प्रयोग की विशेषता अनुप्रास आदि अलंकारों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वर्णों को विशेष पद्धति पर विन्यस्त करना। उदाहरण, चमत्कार से हमारा तात्पर्य यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। इसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष यमक आदि इत्यादि बातें आती हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 34। वर्ण वृत्त, छंद का एक भेद। वृत्त वह सम छंद है जिसमें चार समान चरण में आने वाले वर्णों को गुरु लघु क्रम सुनिश्चित होता है। उदाहरण, इस बात का अनुभव तो बहुत से लोगों ने किया होगा कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों में नाद सौंदर्य की पराकाष्ठा है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 147। वर्ण्य वस्तु, प्रस्तुत वस्तु, वर्णन करने योग्य वस्तु, वह वस्तु जिसका कवि वर्णन करता है। प्राकृतिक दृश्य, मनुष्यकृत कलाकृतियां, मानव का बाह्य जीवन क्रम, उसका भाव जगत आदि सभी कुछ काव्य की वर्ण वस्तु हो सकता है। उदाहरण, इस अनंत विश्व के भाव तेजक रूप में भी अनंत हैं, पर कुछ महापुरुषों ने वर्ण वस्तुओं तक को गिराने का प्रयास किया है। केशवदास जी को इस हवा का सबसे पिछला झोंका लगा था, इसी से उनकी कवि प्रिया में वर्ण वस्तुओं की खासी फिर रिहस्ती मौजूद है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 97। उदाहरण, ऊपर जो पहचान बताई गई है वर्ण वस्तु मैटर के संबंध में है। वर्णन प्रणाली की कुछ पहचान आगे कही जाएगी। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 86। वस्तु प्रति वस्तु, जहां समता के आधार पर अलंकार विधान के लिए लाई हुई दो वस्तुओं अलग अलग कही जाती हैं, किंतु दोनों के धर्म समान हो, वहां दोनों में वस्तु प्रति वस्तु अधिक मानी जाती है, स्थिति मानी जाती है। वस्तु प्रति वस्तु धर्म, सादृश्य मूलक अलंकारों में रूप के साथ ही धर्म की समता का भी विधान होता है। उदाहरण के लिए तुलसी की इस उक्ति दारिद दसानन दवायो दुनी दीना नाथ में दारिद और दसानन में दवाना धर्म समाया है और रूप साम्य साम्य न होकर धर्म साम्य ही है। इस प्रकार के साधर्म को वस्तु प्रति वस्तु धर्म कहेंगे। उदाहरण, सादृश्य के से हमारा अभिप्राय बिंब प्रतिबिंब रूप और साधर्म से वस्तु प्रति वस्तु धर्म है। सादृश्य से हमारा अभिप्राय बिंब प्रतिबिंब रूप और साधर्म से वस्तु प्रतिवस्तु धर्म है, जायसी रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 111 एवं रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 357। वस्तु भूमि, काव्य वस्तु काव्य का वर्ण्य विषय। उदाहरण, अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके छायावाद भीतर बहुत संकोच हो गया, हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 647। वस्तु रूप या प्रस्तुत रूप, विभाव पक्ष के अंतर्गत वर्ण वस्तु को सीधे सीधे प्रस्तुत करना, उसे प्रस्तुत रूप में लाना है, इसी को वस्तु रूप में लाना भी कहते हैं। उदाहरण, यदि हम बाह्य सृष्टि के लिए रूपों और व्यापारों के संबंध में सूर को पहुंच का विचार करते हैं तो यह बात स्पष्ट देखने को मिल जाती है कि प्रस्तुत रूप में लिए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है। सूरदास पृष्ठ संख्या 94। वस्तु वर्णन, प्रबंध काव्यों में कथा प्रसंग के भीतर आने वाली वस्तुओं, नदी, पर्वत, नगर आदि का वर्णन। उदाहरण, वर्णन वस्तु कौशल से, वस्तु वर्णन कौशल से कवि लोग इति वृत्तात्मक अंशों को भी सरल सरस बना सकते हैं, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 78। वस्तुवाद, ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत जो जड़ द्रव्य या पदार्थ की मन के बाहर स्वतंत्रता सत्ता स्वीकार करती है। उदाहरण, जिस रियलिज्म शब्द के लिए उन्होंने वस्तुवाद शब्द बताया वह दार्शनिक भाषा में बाह्यार्थवादी बाह्यार्थवाद कहलाता है, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 151। वस्तु विन्यास, कथा वस्तु का कर्म क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण ही वस्तु विन्यास है। उदाहरण, अतः इस प्रकार के प्रबंध के वस्तु विन्यास की समीक्षा बहुत कुछ दृश्य काव्य के वस्तु विन्यास के समान ही होनी चाहिए, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 73। वस्तु व्यंजना, काव्य में जहाँ कोई तथ्य व्यंजित हो वहाँ वस्तु व्यंजना समझी जाती है। वस्तु से तात्पर्य उस अर्थ से है जिसमें कोई अलंकार न हो। उदाहरण, रस व्यंग होता है, इस कथन कुछ भ्रामक अवश्य है, इससे यह भ्रम होता है कि जिस भाव की व्यंजना होती है वही भाव रस है। यही बात वस्तु व्यंजना के संबंध में भी समझिए, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 96। उदाहरण, व्यंजना दो प्रकार की मानी गई है, वस्तु व्यंजना और भाव व्यंजना, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 163। वस्तु व्यंजनात्मक, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के दो भेद माने जाते हैं, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। जहाँ किसी कथन से कोई ऐसा अभिप्राय ध्वनित या व्यंजित हो जो आलंकारिक न होकर वस्तु मात्र हो, वहाँ वस्तु व्यंजना कही जाएगी और कथन की इस पद्धति के प्रयोग का वस्तु व्यंजनात्मक पद्धति कहा जाएगा। वस्तु का शाब्दिक अर्थ है वस्तुतः विद्यमान वास्तविक, जिसकी सत्ता अलंकार रूप में न हो वास्तविक हो। किसी कथन से व्यंजित ऐसा अभिप्राय जो आलंकारिक न हो वास्तविक हो वस्तु व्यंजना के अंतर्गत समाविष्ट होगा। उदाहरण, सच पूछिए तो वस्तु व्यंजनात्मक या उहात्मक पद्धति का इसी रूप में अवलंबन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 39। वस्तु व्यापार, कवि द्वारा कल्पना के आधार पर किया गया वर्ण वस्तु विधान। उदाहरण, सच्चे कवि वस्तु व्यापार का चित्रण बहुत पढ़ा चढ़ाकर और चटकीला कर सकते हैं, भावों की व्यंजना अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, पर वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ते। वस्तु व्यापार योग, वस्तु और व्यापारों का संश्लेष। उदाहरण, विश्व की अनंतता के भीतर मनुष्य जाति के ज्ञान प्रसार के बीच ऐसे वस्तु व्यापार योग और ऐसे प्रसंग भी हमारी पहुंच के हिसाब से अनंत ही हैं, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 101। वस्तुत्प्रेक्षा, जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, जैसे कंचन रेख कसौटी कसी जनु धन मह दामिनी परगसी। जहां मांग वस्तु में, दामिनी दूसरी वस्तु की उत्प्रेक्षा की गई है, इसलिए वस्तुत्प्रेक्षा है। उदाहरण, सादृश्य मूलक अलंकारों में उसमें वस्तुत्प्रेक्षा अधिक है, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 128। वाक्य ज्ञान, केवल शब्द केवल शब्द ज्ञान जैसा ज्ञान जिसमें स्वानुभूति का योग न हो। उदाहरण, सूर ने जहाँ जिस बात को इस मार्मिक ढंग से कहा है उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दार्शनिक निरूपण के ढंग पर स्वानुभूति और वाक्य ज्ञान का भेद बताकर कहा है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, जिमी गृह मध्य दीप की बातंतम निवृत्ति नहीं होई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, जिमी गृह मध्य दीप की बातंतम निवृत्ति न होई। सूरदास, पृष्ठ संख्या 126। वाक्य दोष। वाक्य के अर्थ के सहज प्रतीति में बाधक दूषित श्रवत्व अश्लीलत्व नेहार्थत्व क्लिष्ट अविमृष्ट विधेयांशत्व अविचारित विधेयांश विधान आदि दोष वाक्य दोष कहे जाते हैं। उदाहरण, वाक्य दोष हिंदी में भी हो सकते हैं इसका विधान, इसका ध्यान तो बहुत कम लोगों को रहा। सूरदास जी भी इस बात में तुलसी से बहुत दूर रहे। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 108। वाक्य वक्रता। वाक्य रचना को चमत्कार पूर्ण बनाना। अप्रस्तुत प्रशंसा, जहां अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत को लक्षित किया जाता है। परिसंख्या, जहां किसी वस्तु का अन्य स्थानों से लोप कर एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है। व्याज स्तुति, जहां स्तुति के बहाने निंदा और निंदा के बहाने स्तुति कही जाती है। और विरोध, जहां पर जाति क्रिया गुण आदि में विरोध प्रतीत होता है। आदि अलंकार के विधान में वाक्य वक्रता से काम लिया जाता है। वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक ने वाक्य वक्रता के असंख्य भेद स्वीकार किए हैं। वाक्य वक्रता कवि प्रतिभा पर निर्भर है। जिस वाक्य को कोई कवि एक प्रकार से प्रयुक्त करता है, उसका दूसरे उसे ही दूसरे प्रकार से प्रयुक्त कर सकते हैं। कवि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं, इसके लिए वाक्य वक्रता की भी कोई सीमा नहीं। सभी प्रकार के अलंकार वाक्य वक्रता के भीतर आ जाते हैं। उदाहरण, अलंकार चाहे अप्रस्तुत योजना के रूप में हो, जैसे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा इत्यादि, जहां चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा परिसंख्या व्याज स्तुति विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में, जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधना के लिए ही। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 49। वाच्यार्थ। अभिधार्थ या मुख्यार्थ किसी कथन का सीधा अर्थ। उदाहरण, सूरदास प्रभु वै अति खोटे कारो कृत ही न माने, इन दोनों वाक्यों में वाच्यार्थ के अतिरिक्त संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है या नहीं। सूरदास, पृष्ठ संख्या 117। वात्सल्य रति। वत्स के प्रति प्रकट होने वाले स्नेह को वात्सल्य रति कहते हैं। इसमें पुत्र की चेष्टाएं, उठना गिरना किलकना तुतलाना आदि उद्दीपन, पुत्र आलम्बन, माता पिता आश्रय शिरश चुंबन, रोमांच आनंदाश्रु आदि अनुभव, हर्ष गर्व आशंका आदि संचारी भाव होते हैं। इस भाव को स्थायी मानकर और इससे उत्पन्न चमत्कार मूलक आनंद को अन्य रसों के आनंद से विशिष्ट मानकर साहित्य दर्पणकार ने इसे वात्सल्य रस प्रधान मानने का प्रस्ताव किया। आचार्य शुक्ल वात्सल्य रस मानते हैं। उदाहरण, वात्सल्य रति भाव के प्रदर्शन में यदि बच्चे की क्रीड़ा का वर्णन हो तो क्या वह अलंकार मात्र होगा? प्रस्तुत वर्ण विषय अलंकार नहीं कहा जा सकता। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 112। वासना। रति शोक क्रोध भय आदि चित्त विकारों के भाव रूप में परिणत होने के पहले की स्थिति वासना की स्थिति में लक्ष्य और आलंबन प्रत्यय रूप में निर्दिष्ट नहीं होते। भाव विशेष स्थिति में उद्दीप्त होते हैं, किंतु वासना निरंतर बनी रहती है। वासना प्रेरित क्रिया का रूप निर्दिष्ट होता है। वह सदैव उसी एक ही निश्चित पद्धति पर घटित होती है। जैसे भाव प्रेरित क्रियाएँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं, वासनात्मक प्रवृत्ति का जीवन प्रयत्न से सीधा लगाव होता है। उदाहरण, इंद्रिय संवेदना वेदना प्रधान होता है, वासना प्रवृत्ति प्रधान होता है और भाव वेद्य प्रधान आलंबन प्रधान होता है। वासनात्मक प्रवृत्ति में लक्ष्य और आलंबन भावना या प्रत्यय रूप में निर्दिष्ट नहीं होते। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 162। उदाहरण, इंद्रिय संवेदन वेदना प्रधान होता है, वासना प्रवृत्ति प्रधान होती है और भाव वेद प्रधान होता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 162। विकल्प, जहां समान सामर्थ्य युक्त परस्पर विरोधी पदार्थों में एक ही स्थिति और काल में विरोध दिखाया जाता है, वहां विकल्प अलंकार होता है। उदाहरण, बीच बीच में नए आचार्य ने नए अलंकार बढ़ाते आए हैं, जैसे विकल्प अलंकार को अलंकार सर्वस्वकार राजा नक रुयक ने ही निकाला था। जैसी ग्रंथावली भूमिका प्रश्न संख्या 119। विक्षेप, माया की वह शक्ति जो ब्रह्म के प्रपंच का आरोप कर देती है विक्षेप कहलाती है। उदाहरण, प्रकृति की दो शक्तियां मानी जाती हैं आवरण और विक्षेप। आवरण द्वारा वह मूल निर्गुण सत्ता के वास्तविक स्वरूप को ढांकती है और विक्षेप द्वारा उसके स्थान पर बदलने वाले नाना रूपों को निकालती है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 147। विचार पद्धति, विचारने और सोचने का तरीका। उदाहरण, अपने विचार पद्धति पर लाने के लिए क्रमशः प्रमाण पर प्रमाण देते जाने को आवश्यकता होती है। विचारोत्तेजक प्रतीक, इंटेलेक्चुअल सिंबल्स, वे प्रतीक जो विचारों एवं भावनाओं को जागृत करते हैं विचारोत्तेजक हैं। उदाहरण, प्रतीक दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो मनोविकार या भाव को जगाते हैं इमोशनल सिंबल्स और कुछ भावनाओं या विचारों को इंटेलेक्चुअल सिंबल्स। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 109। विजातीय भेद, दो अलग अलग जातियों के दो पदार्थों में जो भेद है वह विजाती है, जैसे गाय और भैंस का भेद। उदाहरण, शुद्ध ब्रह्म स्वगत, सजाति और विजाति तीन भेदों से रहित है। किसी वस्तु की का अंश उसका स्वगत भेद होता है, अतः जीव को ब्रह्म का अंश कहना, ब्रह्म ही न कहना, अद्वैत मत के अनुकूल न होकर रामानुज के विशिष्टादैत्व के अनुकूल, जिसके अनुसार चिद चिद विशिष्ट ईश्वर एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 42। वितर्क, संदेह के कारण उत्पन्न विचार। जहाँ करणीय और अकरणीय का निश्चय नहीं हो पाता वहाँ वितर्क की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक संचारी भाव है, अद्भुत और श्रृंगार रस के संचारी रूप में वितर्क की स्थिति देखी जा सकती है। उदाहरण, इसमें अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर किसी नए प्रेमी के चित्त के वितर्क को कैसी सीधी साधी व्यंजना है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 213। उदाहरण 2, ठाकुर के समय वा निर्मोहिनी जानती है मैं अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 35। श्रृंगार के संचारी वितर्क का एक उदाहरण जो नया नहीं कहा जा सकता लीजिए, बादल की नवागत वधु युद्ध के लिए जाने को तैयार पति की ओर देख रही है और खड़ी खड़ी सोचती है, रहो लजाई तो पिए चलिए, कहो तो कह मुहि ठीठ। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 96। विदग्धता, चतुरता, कुशलता, सहजता और स्वाभाविकता के विपरीत सतर्क होकर चतुरता प्रदर्शित करना। उदाहरण, उनमें मंडन के रवैये में प्रेम गोपन के लिए कहे गए वचन विदग्धता के अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 35। विदग्धा नायिका, नायिका का एक भेद जो नायिका वाणी और क्रिया में अत्यंत चतुर हो उसे विदग्धा नायिका कहते हैं। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, वचन विदग्धा एवं क्रिया विदग्धा। वचन विदग्धा नायिका में वाणी की चतुरता और क्रिया विदग्धा नायिका में रति क्रिया निपुणता होती है। उदाहरण, विदग्धा नायिका की बचत विदग्धा या क्रिया विदग्धा में काव्य की रमणीयता इसलिए होती है कि उसके तह में रति भाव वर्तमान रहता है। सूरदास पृष्ठ संख्या 132। विदूषक, नायक का मित्र, अपनी यह अपनी वेशभूषा, बोलचाल, आचार व्यवहार से नायक का मनोरंजन करता है। यह नायक का विश्वास पात्र होता है। इसके लालची और फुक्कड़ होने का विधान भी है। कहीं कहीं इसे बौना, गंजा, लाल आंखों तथा लंबे दांतों वाला भी बताया गया है। वस्तुतः विदूषक बुद्धिमान ब्राह्मण होता है और नायक के मनोरंजन के लिए इसके विकृत आचरण करने पड़ते हैं। उदाहरण, एक बात बहुत अच्छी यह हुई है कि पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो फालतू पात्र करता था, उसके स्थान पर कथा की गति से संबंध कोई पात्र ही हसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 549। विधान विधि फॉर्म, काव्य वस्तु के विधान की पद्धति। कृति विशेष के समस्त विशिष्ट गुणों का निश्चय कराने वाले तत्वों से संगठित रूप। उदाहरण, सच्चे स्वाभाविक रहस्य भावना वाले कवि और सांप्रदायिक या सिद्धांती रहस्यवादी की पहचान के लिए काव्य वस्तु का भेद आरंभ में ही हम दिखा चुके हैं। विधान विधि का भेद ऊपर सूचित किया जाता है, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 139। विधायक कल्पना, कवि की वह मूर्ति विधायनी मानसिक शक्ति जो उसकी अनुभूतियों को मूर्त करने के लिए विधान विभाव करती है, विधायक कल्पना कही जाती है। उदाहरण, अनुभव और विभाव दोनों पक्षों के विधान के लिए भी और सम्यक ग्रहण के लिए भी कल्पना शक्ति अपेक्षित है। विधान के लिए कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और सम्यक ग्रहण के लिए पाठक या श्रोता में ग्राहक कल्पना, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 89। विप्रलंब वियोग, नायक नायिका का प्रगाढ़ परस्परानुराग होने पर भी जब मिलन नहीं होता तो उसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, पूर्वराग विप्रलंब, मान विप्रलंब, प्रवास विप्रलंब, करुण विप्रलंब इत्यादि। उदाहरण, सूर के संयोग वर्णन की बात हो चुकी है, इनका विप्रलंब भी ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है, चिंता सूरदास पृष्ठ संख्या 104। विप्रलंब श्रृंगार, नायक और नायिका के वियोग में भी जब उनके बीच रति की स्थिति होती है और यह रति विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा तथा पहुंच जाती है, तब विप्रलंब श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, सीता हरण व पर विप्रलंब श्रृंगार का माधुर्य देखकर पाठक फिर लंका दहन के अद्भुत, भयानक और विभत्स दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम रावण युद्ध के रौद्र और युद्ध वीर तक पहुंचते हैं, गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 24। विवोध, निद्रा दूर होने के बाद या अविद्या नाश के बाद चैतन्य लाभ होना ही विवोध कहा जाता है। यूं ही सोते हुए मनुष्य का जाग पड़ना विवोध संचारी न होगा, रस्म मानसा पृष्ठ संख्या 231। विभाव, काव्य में रति, शोक, साह आदि स्थायी भावों के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। एक प्रकार से वे समस्त परिस्थितियां जो हमारे मनोभावों को उद्दीप्त करती हैं, उन्हें टिके रहने के लिए विषय रूप आधार देती हैं और विभाव कही जा सकती हैं। उदाहरण, बिंब ग्रहण करने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है जो विभाव में दिखाई पड़ता है। काव्य में विभाव मुख्य समझना चाहिए, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 2। विभावन व्यापार, रस प्रक्रिया के अंतर्गत विभावों का महत्व सर्वमान्य है। विभाव का अर्थ है कारण। लोक में रति आदि भावों के जो कारण होते हैं वे ही काव्य में विभाव कहे जाते हैं। भावों के कारण रूप दो तत्व होते हैं, उद्दीपन एवं आलंबन। लोक में ये उद्दीपन और आलंबन देश काल की सीमा में बद्ध होते हैं, काव्य में ये देश काल की सीमा में परे होते हैं। लोक में दुष्यंत और शकुंतला राजा और रानी के रूप सामान्य होते हैं कि काव्य में ये प्रेमी प्रेमिका मात्र रह जाते हैं, इनका विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है। लोक में प्रकृति का रम्य वातावरण तथा स्थान विशेष में उपस्थित नायिका नायक के हृदय में ही रति उद्दीप्त करता है, किंतु काव्य वर्णन में होने पर वह सर्वदेशीय हो जाता है। इस प्रकार विभावों का देश काल की सीमा से ऊपर उठकर सहृदय मात्र के चित्त में रत्यादि का भावों को प्रकाशित करने की प्रक्रिया ही विभावना अलंकार है। उदाहरण, जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजक में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभावन व्यापार है कल्पना का प्रधान कर्म क्षेत्र वही है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 105। विभावना, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य के संपन्न होने का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण, राम की चढ़ाई का हाल सुनकर इतनी घबराहट हुई, इतनी आशंका फैली कि बसतगढ़ लंक लंकेश रावत अछत लंक नहीं खात को भात रांध्यो। यहाँ आशंका को व्यक्त करने में लक्षणा और व्यंजना के मेल में विभावना कितनी सुंदर व्यक्त हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 94। विभाव पक्ष, भावों चित्त वृत्तियों के विषय का प्रस्तुतीकरण विभाव पक्ष है। उद्दीपन और आलंबन दोनों के विधान से विभाव पक्ष पूर्ण होता है। उदाहरण, कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं, विभाव पक्ष और भाव पक्ष। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 109। विभाव प्रधान कविता, ऐसी कविता जिसमें आलंबन का ही विस्तृत एवं संश्लिष्ट चित्रण किया जाता है। उदाहरण, विभाव प्रधान कविता में ऐसी कविता जिसमें आलंबन का ही विस्तृत रमणीय चित्रण रहता है संवेदना पाठक के ऊपर छोड़ दी जाती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 102। वियोग की अंतरदशाएं, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मृति, वियोग की अंतरदशाएं हैं। अभिलाषा, नायक और नायिका की परस्पर स्पृहा, चिंता, मिलन के उपायों की चिंता, उन्माद, जड़ चेतन में विवेक न कर पाना, प्रलाप, मन के स्थिर न होने से अटपटी बात करना, व्याधि, दीर्घ निश्वास, पांडुता, कृशता, ये सभी व्याधि हैं। जड़ता, शारीरिक और मानसिक निश्चिष्टता, शेष अंतरदशाओं का अर्थ नाम से ही स्पष्ट है। शास्त्रकारों ने इन दशाओं का वर्णन पूर्वराग परस्पर अनुरक्त नायक नायिका की समागम पूर्व की दशा में भी किया जाता है। आचार्य शुक्ल पूर्वराग के स्थिति में भी इन सभी की सत्ता नहीं मानते, वे पूर्वराग में केवल अभिलाषा की स्थिति स्वीकार करते हैं। विप्रलंब श्रृंगार में मरण का वर्णन निषिद्ध है, इसका वर्णन मरणासन दशा के रूप में या मरण की हार्दिक अभिलाषा के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण, वियोग की जितनी अंतरदशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है वे उसके भीतर मौजूद हैं। सूरदास पृष्ठ संख्या 104। विरह, प्रिय के कुछ दिनों के लिए वियुक्त होने मात्र से जो दुख होता है वह विरह है। साहित्य दर्पणकार के अनुसार विप्रलंब वह श्रृंगार भेद है जिसमें नायक नायिका का परस्परानुराग तो प्रगाढ़ हुआ करता है किंतु परस्पर मिलन नहीं होने पाता। यत्र तु रति प्रकिष्ठा ना भी अष्टम उपैति विप्रलंभो असौ। प्रिय के दुख या पीड़ा पर जो दुख होता है वह शोक है। प्रिय के कुछ दिनों के लिए वियुक्त होने मात्र का जो दुख है वह विरह है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 60। विरुद्ध अविरुद्ध संचारी, संचारी भाव भी स्थायी भावों के विरुद्ध या अविरुद्ध हो सकते हैं। स्थायी भावों के दो वर्ग हो सकते हैं, सुखात्मक एवं दुखात्मक। इसी प्रकार संचारी भावों के चार भेद हो सकते हैं, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। सुखात्मक भाव राग, हास, उत्साह के साथ सुखात्मक संचारी गर्व, औत्सुक्य, आशा, धैर्य, हस, हर्ष, मद, मृदुलता, चपलता इत्यादि और दुखात्मक भावों शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा के कारण दुखात्मक संचारी असूया, अमर्ष, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, मोह, ग्लानि आदि अविरुद्ध माने जाएंगे। इसी न्याय से सुखात्मक भावों के साथ दुखात्मक संचारी और दुखात्मक भावों के साथ सुखात्मक संचारी भाव विरुद्ध माने जाएंगे। उदाहरण, भाव के मूल स्वरूप के लिए उदय काल में केवल अविरुद्ध संचारी ही प्रकट होते हैं। विरुद्ध संचारी जब प्रकट होंगे तब अकेले भाव के रूप में स्वरूप के साथ कभी नहीं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 201। विरोध, विरोधाभास, जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है वहाँ विरोध या विरोधाभास अलंकार है। उदाहरण, ना जीऊ जिए न दसों अवस्था, कठिन मरम ते प्रेम व्यवस्था। विरोध, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 115। विरोधाभास, जहां दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न हो किंतु विरोध का आभास मिले वहां विरोधाभास अलंकार है। यह विरोध प्रायः शब्दाश्रित होता है। उदाहरण, मेरा यह कथन विरोधाभास का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, 16 आने ठीक है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 166। विवर्तवाद, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार कारण ही एकमात्र सत्ता है। जब वह कार्य रूप में परिणत होता है तो केवल आकार परिवर्तित होता है। आकारगत परिवर्तन मिथ्या है। कारण के इस मिथ्या परिवर्तन को अद्वैत वेदांत की भाषा में विवर्त कहते हैं। उदाहरण, जगत के वास्तविक सत्ता न होते हुए भी मन के जिस वृत्ति द्वारा उसकी सत्ता की प्रतीति होती है, शंकर के अद्वैत मत पर विवर्त की कही गई है। सर्प न होने पर भी रस्सी में उसके लिए होने की जो मिथ्या प्रतीति होती है वह विवर्त के कारण होती है। सूरदास पृष्ठ संख्या 49। उदाहरण, उनको सूफिया प्रतिबिंबवाद, वेदांत के विवर्तवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद आदि अनेक वादों में से एक प्रसिद्ध वाद है। सूरदास पृष्ठ संख्या 23। विलायती वक्रोक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक क्रोचे 1866 से 1942 ईस्वी ने अभिव्यंजनावाद के नाम से काव्य कला की रचना प्रक्रिया का एक दर्शन प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है, सहज ज्ञान प्रज्ञा एवं बुद्धि लब्ध ज्ञान प्रमा। सहज ज्ञान कल्पना प्रसूत होता है, बुद्धि लब्ध ज्ञान तर्क विश्लेषण एवं विचार द्वारा होता है। सहज ज्ञान का संबंध कलाओं से है, बुद्धि लब्ध ज्ञान विज्ञान शास्त्र और दर्शन के लिए उपयुक्त है। सहज ज्ञान या कल्पना लब्ध ज्ञान बिंबात्मक होने के कारण अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। यही अभिव्यक्ति व्यक्तिवाद व्यंजनावाद कही जाती है। यही कला है। कला की रचना प्रक्रिया के 4 चरण हैं। अंतःसंस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य भावना से उत्पन्न आनंद एवं कल्पना या कलापरक आध्यात्मिक योजना की शब्द रंग रेखा आदि के माध्यम से स्थूल अभिव्यक्ति, ट्रांसलेशन ऑफ द एस्थेटिक फैक्ट इनटू फिजिकल फिनोमिना। सामान्यतः हमारा ध्यान शब्द रंग रेखा आदि के मध्य में होने वाले स्थूल अभिव्यक्ति पर ही टिका रहता है, किंतु यह तो कलात्मक अभिव्यक्ति में गौण वस्तु है। प्रमुख है अभिव्यंजना, यही कला है। कुंतक के वक्रोक्तिवाद और क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में मौलिक अंतर है। कुंतक ने उक्ति वक्रता को काव्य का प्राण तत्व माना है और उक्ति वक्रता का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। उसकी उक्ति सार्थक शब्द समूह के माध्यम से होने वाली स्थूल अभिव्यक्ति है, मानसिक अभिव्यंजना नहीं। कुंतक ने काव्य कला की रचना प्रक्रिया का दर्शन नहीं दिया है, वरन रचित काव्य कृतियों के वैशिष्ट्य प्रतिपादन का एक मापदंड प्रस्तुत किया है। क्रोचे की अभिव्यंजना और कुंतक की वक्रोक्ति को एक समान बताकर आचार्य शुक्ल ने एक अनावश्यक विवाद का श्री गणेश कर दिया था। इन दोनों में समानता इतनी ही है कि इन्हें महत्त्व देने पर काव्य सौंदर्य के विशेष में एक शुद्ध कलावादी या व्यक्तिवादी दृष्टि को बल मिलता है और काव्य जीवन की वास्तविकता से कटकर एक स्वतंत्र कल्पना लोक की वस्तु बन जाता है। आश्चर्य यह है कि आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का विश्लेषण करते हुए बहुत कुछ उसके सच्चे स्वरूप की मीमांसा की है, किंतु उसके संबंध में मत स्थिर करते हुए उसे वक्रोक्तिवाद का विलायती संस्करण मान जाता है। उदाहरण, यूरोप में जो भी आजकल क्रोची के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है, विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षण प्रधान है एवं लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही उक्ति के अनुरूप अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहां कविता मानने लगते हैं। द्वितीय उदाहरण, इस धारणा को कला कला के लिए है बहुत दूर तक घसीटकर इसे शास्त्रीय रूप में देने का सबसे प्रकांड प्रयास इटली के क्रोचे ने अपने सौंदर्य शास्त्र में किया, जिसका प्रभाव केवल काव्य चर्चा में ही नहीं काव्य रचना में भी बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। उसने अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया जिसके अनुसार कला में अभिव्यंजना ही सब कुछ है, अभिव्यंजना से अलग कोई और अभिव्यंग वस्तु या अर्थ नहीं होता। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 169।